ओम शांति। आज का जो विषय है वो हमारे दिन प्रतिदिन के समस्याओं और भावों से संबंधित है। ऐसे तो आपको हम स्लाइड शो दिखाएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। इसमें कॉपी किया था लेकिन वो कॉपी हुआ नहीं है, तो हमने अभी पेन ड्राइव मंगाई है। जब तक हुआ है तब तक हम ऐसे ही बात करते हैं आपसे। कहते हैं गुस्सा जो है वो विश्वव्यापक है। कोई भी इंसान, कोई भी धर्म, संप्रदाय, देश, जाति, कल्चर ऐसा नहीं है जिसके लोग गुस्सा नहीं करते हैं। हर दिन समाचार पत्रों में या टेलीविजन में या इंटरनेट में, रेडियोस में ये समाचार जरूर होता है कि गुस्से के कारण कहां हिंसा, हत्या या अन्य घटनाएं हुई हैं। मैंने ही एक समाचार पढ़ा था, यहां पास के गांव की घटना है कि एक पति को अपनी पत्नी पर शक था और उस कारण वो हमेशा उससे किसी छोटी छोटी बात को लेकर के झगड़ा करता था। और एक दिन पत्नी जो है वो देरी से आई घर में, तो पहले ही उसको शक था और उस बात को लेकर के उसका शक और बढ़ गया और दोनों में झगड़ा होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि वो घर में उनकी कुल्हाड़ी थी वो उठा के उसने अपनी पत्नी को मार दिया। अब वो जब मर गई तो उसको होश आया कि मैंने क्या कर दिया। उसी समय पुलिस भी आ गई और उसको पकड़ के ले गई। उनके दो बच्चे थे। एक वो बात जो सच है भी या नहीं, जिसका उसका उसको पूरी तरह पता भी नहीं है, उसके लिए वो एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो ये तो बहुत चरम स्थिति है। हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इस स्थिति तक तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी गुस्से के कारण हमें अपने संबंधों में, अपने जीवन में, व्यवहार में बहुत हानि उठानी पड़ती है। फिर हम कहेंगे कि जो गुस्सा है मनोविज्ञान की भाषा में वो थोड़े समय का पागलपन है। जैसे एक पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ऐसे ही गुस्से में मनुष्य की स्थिति होती है। हम ऐसे शब्द बोलते हैं गुस्से में आकर के जो हमें नहीं कहने चाहिए, और वो शब्द हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इसीलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता है। कहने वाला कई बार भूल जाता है लेकिन सुनने वाला शायद नहीं भूल पाता है, और जो संबंध है वो सदा के लिए खराब हो जाते हैं। एक मिनट लगेगा। तो एंगर इज टेम्परेरी इंसैनिटी, वही हम बात कर रहे थे कि उसके कारण वो संबंध खराब होते हैं, कई बार संबंध टूट तक जाते हैं। एंगर इज सेल्फ पैरालाइजिंग इमोशन। गुस्सा जो है वो मनुष्य को असहाय बना देता है, उसका अपने ऊपर से कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड इट्स लाइक एन एसिड विच हार्म्स द वेसल मोर देन ऑन हुम इट इज पोर्ड। एक एसिड की तरह है जो पात्र को ही ज्यादा नष्ट करता है, जिस पात्र में डाला जाता है उसे ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यानी गुस्सा करने वाले को ज्यादा नुकसान होता है बल्कि जिस पर हम गुस्सा करते हैं। और कभी भी गुस्से से समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, गुस्से से समस्याएं बढ़ती ही हैं। गुस्सा करने वाला कभी भी किसी का आदर्श नहीं हो सकता, और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज की तरह है, लग जाता है। अगर कोई आप पर गुस्सा करता है तो आप भी बिना सोचे समझे गुस्सा करने लगते हैं। गुस्से की जो तीव्रता है वो कई लेवल्स पर है। हल्का सा चिड़चिड़ापन उसको भी हम गुस्सा कहेंगे, आवेश आ जाता है, जोश आ जाता है, हम नाराज हो जाते हैं, किसी से वैर भाव रखते हैं, नफरत करते हैं, सब गुस्से के डिफरेंट स्टेजेस हैं। और आउट ऑफ कंट्रोल एंगर यानी बेकाबू गुस्सा, वो हम देखते हैं ऐसी स्थिति में हम चीजें उठाकर फेंकते हैं या तोड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, और चरम किसी की हत्या तक कर दी जाती है, वो उसका बिल्कुल एक्सट्रीम है। गुस्से की भावनाओं को व्यक्त हम तीन तरह से करते हैं। ज्यादातर जो आम तरीका है वो है एग्रेसिव वे। कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई और हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसमें गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा उस पर विचार करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते लेकिन उस परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करते हैं। मुझे वो चित्र पर ध्यान चला गया, सॉरी। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने गुस्से की भावनाओं को पी लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन मन में गुस्सा है और उस गुस्से को पी लिया। अब एग्रेसिव वे हमारा क्या होता है, एक एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगी कि एक पति ऑफिस से आए घर में और जो पत्नी थी वो टेलीविजन देख रही थी, वो अपना कोई मनपसंद सीरियल देख रही थी और उस दिन क्रिकेट मैच आ रहा था। तो भाइयों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है तो उनको वो मैच देखना था और उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी पत्नी के हाथ से रिमोट लिया, क्योंकि जब ऑफिस से आते हैं तो टेम्पर थोड़ा इस तरह का ही होता है, और अपना चैनल लगा दिया। अब वो पत्नी तो जो देख रही थी वो थोड़ा क्लाइमेक्स पर था, उनको छोड़ना नहीं था, उन्होंने भी फिर से रिमोट छीना और अपना लगा दिया। फिर दोबारा बिना कहे उन्होंने रिमोट लिया और अपना स्पोर्ट्स लगा दिया। अब ये पत्नी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने फिर से रिमोट छीना और फिर से अपना चैनल लगा दिया ना। तो ये बिना कहे जैसे रिएक्शन हो रही है और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पति ने जब एक बार फिर से छीना तो अब उनसे रहा नहीं गया, उनका गुस्सा जो है वो बेकाबू हुआ और उन्होंने रिमोट उठाकर ही फेंक दिया। अब फेंका तो वो टीवी पर लग गया, टीवी ही टूट गया। तो ये है एग्रेसिव वे। लेकिन इसमें असर्टिव वे क्या हो सकता है, पत्नी ये सोच सकती है कि सारा दिन मैं घर में होती हूँ और अपने पसंद के प्रोग्राम देखती हूँ और वो सीरियल तो कई बार रिपीट होते हैं, चलो मैं बाद में देख लूंगी, अभी यहाँ मैच आ रहा है तो इनको मैं मैच देखने दूं। और अगर नहीं समझो तो फिर वो ये कह सकती है कि 10 मिनट में ये पूरा हो जाएगा, मैं 10 मिनट के बाद रिमोट आपको दे दूंगी। और अगर वो भी नहीं तो फिर अगर दोनों को ही इतना इंटरेस्ट है तो वो अलग अलग टीवी अपने लिए रख सकते हैं और अपना मनपसंद प्रोग्राम देख सकते हैं। तो ये है कि हम उस परिस्थिति को समझ कर और फिर उसको सॉल्व करते हैं। एक बार ऐसे ही एक और घटना आपसे शेयर करना चाहेंगे कि एक लेडी वो बाजार से आई और सामान ला करके वो किचन में गई और उसने अपना पर्स सोफे के सामने टेबल पर रख दिया। 2 साल का बच्चा था, घर में खेल रहा था और बच्चों को तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है। देखा माँ ने वो रखा है, क्या रखा है, उसको खोला और उसमें नोट थे, पर्स था, नोट थे, उसमें 500 का नोट उसने निकाला और वो बच्चा उस नोट के साथ खेलने लगा। वो 2 साल के बच्चे को ये समझ नहीं कि वो 500 का नोट है, धीरे धीरे उसको मोड़ दिया फिर फाड़ दिया। अब माँ रसोई से बाहर निकली और उसने देखा कि ये बच्चे ने सारे नोट फैला रखे हैं, उसमें से 500 के नोट को तो फाड़ ही दिया है। बिना सोचे समझे रिएक्शन जो होती है, आंखें जोर से एक थप्पड़ लगा दिया उसको, वो बच्चा जो है वो फर्श पर सिर के बल गिरा, ऐसे गिरा वो और उसको सिर में चोट आई, थोड़ा सा रोया और फिर चुप हो गया, है ना, तो बेहोशी आ गई उसको। तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा और वहां डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, उसके कुछ टेस्ट भी करने पड़ेंगे कहीं इंटरनल इंजरी ना हो। पूरे दिन का खर्चा उसका हो गया 11,000 रुपया। 500 ये है एग्रेसिव वे। लेकिन इसमें असर्टिव वे क्या हो सकता है, उस माँ की खुद की गलती है, उसे समझना चाहिए कि मेरे घर में छोटा बच्चा है, मैंने पर्स ऐसी जगह क्यों रखा जो उसके हाथ में आए, चलो अब रख दिया और उसने वो नोट फाड़ भी दिया तो बच्चा तो ना समझ है, उसको नहीं मालूम है कि ये 500 का नोट है, तो उसको मारने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हम थोड़ा सा परिस्थिति को समझ के रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर गुस्से की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अगर हम गुस्सा पीते हैं तो ये स्थिति भी तब पैदा होती है हम जिस व्यक्ति के सामने हैं, मानो वो कोई ऐसी बात हमसे कह रहे हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है। वो हमारे अधिकारी भी हो सकते हैं, वो हमारे परिवार के कोई सम्माननीय सदस्य भी हो सकते हैं, जिनके आगे हम कुछ कह नहीं सकते, हमें चुप रह जाना पड़ता है। लेकिन जब हम गुस्सा दबाते हैं और अगर बार बार ये स्थिति होती है तो फिर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। कई बार इसके कारण कॉम्प्लेक्सेस पैदा होते हैं, हीन भावना और डिप्रेशन तक भी हो जाता है, और ये स्थिति लंबे काल तक अगर रहती है तो व्यक्ति में कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो यहां हम डिफरेंस देखते हैं एग्रेसिव पीपल एंड असर्टिव पीपल। जो एग्रेसिव लोग होते हैं दे रिएक्ट, और जो असर्टिव होते हैं वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं और शांत भाव से कहते हैं। जो एग्रेसिव होते हैं दे स्पीक लाउड एंड बॉसी, कभी भी वो बात करेंगे तो जोर से बात करेंगे, अपनी बात को थोड़ा रॉफ से कहेंगे। और जो असर्टिव होते हैं दे एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड फीलिंग्स कामली एंड इजिली, वो अपनी आवश्यकताओं को बहुत शांत और सहज भाव से कहते हैं। एग्रेसिव पीपल दे डोंट केयर अबाउट फीलिंग्स ऑफ अदर्स एंड लाइक टू गेट इवन, दूसरों के भावनाओं की परवाह नहीं करते, उनके अनुसार उनका काम होना ही चाहिए। एंड असर्टिव पीपल दे डोंट ब्लेम अदर्स बट टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन फीलिंग्स, दूसरों को वो दोष नहीं देते लेकिन अपनी जिम्मेवारियों या अपनी भावनाओं की जो जिम्मेवारी है वो खुद लेते हैं। एग्रेसिव पीपल दे बिलीव दैट विनिंग इज एवरीथिंग, किसी भी कीमत पर उनकी सफलता होनी चाहिए, यानी वो स्वार्थी ज्यादा होते हैं। और जो असर्टिव पीपल हैं दे रिस्पेक्ट अदर्स राइट एंड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अदर्स। जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारी शारीरिक स्थिति कैसी होती है, यह सब हम अनुभवी हैं। चेहरा तमतमा जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है और पूरा ब्लड फ्लो जो है वो मांसपेशियों की तरफ हो जाता है, ब्रेन को ब्लड फ्लो कम होता है। इसलिए कहते हैं क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है। और हाथ पांव में फ्लो ज्यादा होता है इसलिए हाथ पांव उठने लगते हैं मारने के लिए, मुट्ठियां भीग जाती हैं और सांस तेज तेज चलने लगती है। और फिर जब गुस्सा समाप्त होता है तो हमेशा एक पश्चाताप से हमें गुजरना पड़ता है। आउट ऑफ कंट्रोल एंगर इज डिस्ट्रक्टिव, हमेशा ही नुकसानदायक होता है, नष्ट करने वाला होता है। ऐसा गुस्सा वर्क प्लेस पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जहां हम साथियों के साथ काम करते हैं और यदि हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं तो वो लोग हमसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में आने लगता है कि इनसे यदि हम कोई बात कहेंगे तो इनका भरोसा नहीं है, ये कब गुस्सा करके हमारा अपमान कर देंगे, तो दूर ही रहना अच्छा है। इससे हमारा जीवन स्तर भी प्रभावित होता है। जो गुस्सा करने वाले लोग होते हैं उनके जीवन से शांति, सुख और समृद्धि गायब होने लगती है। इसलिए कहावत बनी कि जिस घर में गुस्सा होता है वहां पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। और गुस्सा करने वाले व्यक्ति वो अपने गुप्त दुश्मन बना लेते हैं, लोग उनके प्रति मन में वैर भाव रखने लगते हैं और अवसर ढूंढते रहते हैं कि कब वो अपना बदला पूरा कर सकें। और स्टबर्ननेस, धीरे धीरे वो व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी होने लगते हैं। और शारीरिक जो प्रभाव आते हैं, क्योंकि गुस्से की स्थिति में हमारे शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि गुस्सा तनाव का एक रूप है। हमारे शरीर में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स बनते हैं। एड्रेनलिन एक स्टिमुलेंट है और उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एड्रेनलिन कोरोनरी आर्टरीज को भी कंस्ट्रिक्ट करता है और वो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से अगर ब्लॉकेजेस हैं हार्ट में, कुछ लोगों के एक सर्टेन एज के बाद कुछ परसेंटेज में आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं, 50%, 60%, 70%, तो नॉर्मली वो सिम्टम क्रिएट नहीं करते क्योंकि हार्ट में वो कोपिंग एबिलिटी होती है, लेकिन अगर गुस्सा किया तो वो जो कोरोनरी आर्टरीज जो पार्शियली ब्लॉक्ड हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, यानी और सिकुड़ जाती हैं, और उसकी वजह से ऑक्सीजन फ्लो कम होने के कारण एंजाइना हो सकता है, एंजाइना माना हार्ट पेन होना। और अगर थोड़ा भी ज्यादा ब्लॉकेज है तो वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो सकती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। सो इट कैन कॉज एंजाइना एंड MI, MI मीन्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक बार ऐसे ही CCU में एक VIP पेशेंट, रिच पेशेंट था, उसको माइल्ड हार्ट अटैक हुआ, उसको एडमिट किया गया, और जो नर्स थी वहां वो दूसरे सीरियस पेशेंट को अटेंड कर रही थी। तो जब तक वो उस पेशेंट तक पहुंची तब तक थोड़े कुछ मिनट्स हो चुके थे, उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं यहां आया हूं और मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, और उसने नर्स पर गुस्सा करना शुरू किया, तो उसका जो माइल्ड हार्ट अटैक था वो मैसिव हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो गया, और बाद में बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको बचाया नहीं जा सका। तो इसलिए कई बार डॉक्टर्स कहते हैं हार्ट पेशेंट्स को कि आप गुस्सा करना छोड़ दीजिए, हाँ टेंशन में मत रहिए, चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे शरीर में ये केमिकल्स तुरंत बढ़ा देते हैं और उनका नेगेटिव इफेक्ट वो सिस्टम पर आ जाता है। गुस्से की वजह से हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, हमारे मस्तिष्क पर भी इसके बुरे प्रभाव होते हैं, उसी की एड्रेनलिन की वजह से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, मस्तिष्क को ऑक्सीजन कम मिलती है, और अगर ज्यादा आयु है 60 वर्ष से ऊपर की उम्र में है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, स्टिफ होती हैं। नॉर्मली ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं तो वो इंक्रीज्ड फ्लो या जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसको कोप अप कर पाती हैं, लेकिन अगर वो स्टिफ हैं तो फिर रप्चर हो सकती हैं कई बार, और उसकी वजह से स्ट्रोक और पैरालिसिस हो सकता है। मसल्स टेंस हो जाती हैं, 80 मसल्स जो हैं हमारे शरीर की वो गुस्से की स्थिति में तनाव में आती हैं, बताए ना ब्लड फ्लो जो है वो मसल्स की तरफ हो जाता है, और उसकी वजह से सिर दर्द, बैक एक, दूसरे एक्स भी हो सकते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो रोगों से लड़ने की क्षमता कहलाती है, गुस्से और तनाव की स्थिति में वो कमजोर हो जाता है। तो सामान्यतः जो वातावरण में जीवाणु विषाणु होते हैं वो हम में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम वीक होता है तो सिंपल से जो जीवाणु हैं वो भी हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर पाते हैं, यानी इन्फेक्शन रेट बढ़ जाती है, वी आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। ऐसे ही GIT पर भी इसका इफेक्ट आता है, उसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस नामक एक बीमारी होती है। मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू एंगर, मानसिक प्रभाव भी होते हैं, हम सभी अनुभवी हैं, गुस्सा करने के बाद शांति और खुशी मिलती है, क्या मिलता है, अशांति, तनाव, डिप्रेशन और चिंता, नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है उस व्यक्ति के बारे में, हम सोचते हैं इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा कहना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अच्छा अब फ्यूचर में अगर वो मेरे सामने आएगा तो मुझे उसके साथ कैसे बिहेव करना है, क्या चलता रहता है, लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड वेस्ट थॉट्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। फीलिंग्स ऑफ रिवेंज एंड हेट्रेट हो जाती हैं एंड दैट कैन लीड टू इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई भी काम में हमारी एकाग्रता नहीं हो पाती है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि मन जो है वो उन विचारों में उलझा हुआ होता है। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होने लगता है, हम बात बात में चिल्लाते हैं, कई बार लोग सोते हुए भी, सबकॉन्शियस माइंड में भी जब वो गुस्सा होता है तो लोग सोते सोते भी जो दांत किटकिटाते हैं ना, उसका रीजन होता है कि वो सप्रेस्ड एंगर जो है वो दिमाग में है। सोशल इफेक्ट्स ऑफ एंगर, इस समाज में जो भी हिंसा या गैर सामाजिक गतिविधियां होती हैं कई बार वो बदला लेने की भावना से ही होती हैं, हम सभी जानते हैं उनके मन में कोई ना कोई वो भाव होता है और समय आने पर वो उसे निकालते हैं, यहां तक कि अपहरण तक कर लिया जाता है, किसी के घर में चोरी करवा दी जाती है, थ्रेटन करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर युद्ध और आतंकवाद की घटनाएं हैं उसके जड़ में भी कहीं ना कहीं क्रोध होता है. स्ट्राइक्स एंड इलीगल एक्टिविटीज लाइक वायोलेशन ऑफ गवर्नमेंट लॉज एंड ह्यूमन वैल्यूज. अगर मैनेजमेंट बात नहीं मान रहा है या गवर्नमेंट बात नहीं मान रही तो लोग क्या करते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और इस तरह से गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून कायदों को भी तोड़ते हैं, अपना गुस्सा इस तरह से निकालते हैं. जो पब्लिक है वो अपनी बात मनवाने के लिए अपना गुस्सा इस तरह से निकालती है. हम लगभग चार प्रकार से गुस्सा करते हैं. लाइन इन वॉटर, पानी पर लकीर के समान, पानी पर लकीर कभी ठहरती नहीं है, गुस्सा आता है और चला जाता है. ऐसा गुस्सा कब होता है, जिस व्यक्ति के प्रति हम गुस्सा कर रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में प्रेम और शुभ भावना है, लेकिन अगर वो बात नहीं मान रहे तो हम थोड़ा सा अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ना चाहते हुए भी हम गुस्सा कर गए तो हम तुरंत रियलाइज करते हैं और उससे दुगने प्रेम से हम उस व्यक्ति से बात करते हैं, उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी गलती रियलाइज कर लेते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है. तो इस तरह का गुस्सा है लाइन इन वॉटर. कई बार गुरु का शिष्य के प्रति भी जो गुस्सा होता है वो इस प्रकार का होता है. लाइन इन सैंड, जो रेत पर लकीर है वो कुछ घंटे रहती है. तो अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में कोई मनमुटाव हुआ, कोई बात हुई, थोड़ी नाराजगी होती है, कुछ घंटे तक चलती है, लेकिन क्योंकि हमें साथ ही रहना है, हमारा काम नहीं चलता है तो हम ज्यादा समय तक उस नाराजगी को नहीं चला पाते. कोई एक झुक जाता है, गलती मान लेता है और फिर धीरे धीरे हम फिर से सामान्य हो जाते हैं. लाइन इन क्ले, मिट्टी पर जो लकीर होती है वो कुछ दिनों तक चलती है. ऐसा गुस्सा या तो हमारे संबंधियों के साथ होता है या फिर दोस्तों के साथ होता है जिनसे हम रोज नहीं मिलते हैं, तो एक बार अगर कोई कहा सुनी हुई कोई बातचीत हो गई तो फिर वो कुछ दिनों तक चलती रहती है और जब हम पुनः मिलें, उस गलतफहमी को दूर करें, तब तक वो बात सामान्य नहीं होती, उनके प्रति वो भाव मन में बना रहता है. लाइन इन रॉक, चट्टान पर जो लकीर है वो अमिट होती है, मिटती ही नहीं है. तो कुछ लोगों के प्रति हमारा गुस्सा ऐसा होता है जो आजीवन चलता है, समाप्ति नहीं होता है और यहां तक कि हमारे बाद हमारी पीढ़ियां भी उस वैर भाव को निभाती हैं. ये है चट्टान पर लकीर के समान. हालांकि रेयर होता है लेकिन फिर भी ऐसा भी होता है. आप सभी अनुभवी हैं गुस्से के, थोड़ा सा हम आपसे शेयर करेंगे कौन सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब आपको गुस्सा आता है, कौन सी ऐसी क्या कहेंगे कारण बनते हैं जो आप गुस्सा करते हैं. कुछ चीजें, कुछ कारण तो बहुत ही कॉमन है. हाँ, बच्चे नहीं सुनते हैं तो गुस्सा आता है, बात नहीं मानी जाती है, ये दो चीजें तो बहुत ही कॉमन है. जी, ईगो, ईगो के कारण भी गुस्सा आता है, जहां हम अपने को बड़ा समझते हैं और इनको मेरी बात माननी ही चाहिए लेकिन नहीं मान रहे. और अच्छा कोई भी कारण बन सकता है. भय, भय के कारण भी गुस्सा आता है. और जी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कईयों का तो भी गुस्सा आता है. और मे बी, जरूर हम शेयर करेंगे इस बात को. अच्छा, कुछ बहुत आम कारण जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं, छोटी बड़ी बातें कोई भी हो सकती हैं और कोई भी हमारा ट्रिगर हो सकता है एंगर का. समवन बोरोस योर थिंग्स विदाउट योर नॉलेज, आपकी वस्तु को कोई आपके इजाजत के बिना प्रयोग करता है, गुस्सा आता है. आपकी पर्सनल चीज है और किसी ने यूज कर ली. पीपुल मेक जोक्स अबाउट यू और इंसल्ट यू. कोई आपका मजाक बना रहा है चार लोगों के सामने. अ पर्सन क्रिटिसाइजेस ब्लेम्स यू इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स. अगर कोई आपकी गलती आपके फ्रेंड्स के सामने निकालकर बताता है. यू हैव बीन पॉइंटेड आउट फॉर समथिंग यू डिडंट डू. जो गलती आपने की नहीं है उसके लिए आपको दोषी बता रहे हैं. डंपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय सुपीरियर्स. पहले ही बहुत ज्यादा काम है, ऊपर से और काम दिया जा रहा है. समवन स्पॉइल्स योर वर्क एंड बिलोंगिंग्स. आपके काम को नुकसान पहुंचा दिया, जो आपने किया उसे खराब कर दिया. व्हेन द बस एंड ट्रेन इज लेट. ऐसा होता है, हम स्टेशन पर पहुंचे और पता चला 2 घंटे ट्रेन लेट है. तो भले ही उस तरह से गुस्सा नहीं आता, अंदर खीज होती है, लेकिन वो भी गुस्से का एक रूप है. आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं. ट्रैफिक जाम में फंसते हैं या बहुत ट्रैफिक है और आपकी गाड़ी को जस्ट कोई ऐसे टच करके निकल गया. हाँ, वो तो निकल गया आगे, लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे उस पर गुस्सा करते हैं. ऐसे कई बार ट्रैफिक में स्थिति बनती है. बींग गिवन रॉन्ग डायरेक्शंस. हाँ, आप किसी से कोई पूछते हैं स्थान, लेकिन वो आपको गलत कहीं बता देते हैं और आप घूमते रहते हैं तो फिर गुस्सा करते हैं. योर फ्रेंड्स गो ऑफ विदाउट यू. फ्रेंड्स के साथ मिलकर आपने कोई कार्यक्रम बनाया, लेकिन वो आपको छोड़कर चले गए. तो ये जो भी कारण बनते हैं, इनमें हमें जो गुस्सा आता है, उस क्रोध का हम निवारण कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो यदि हम समझने की कोशिश करें, जैसे हमने बात की कि या तो हम एग्रेसिव वे में अपनी फीलिंग्स लाते हैं, लेकिन हम असर्टिव भी हो सकते हैं. हम उस बात को समझने की कोशिश करें, और जब हम समझकर व्यवहार करते हैं तो फिर हम गुस्से से बात नहीं करते, लेकिन उसी बात को हम शांति से कहते हैं. अदर्स डोंट बिहेव और एक्ट अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर. जब लोग हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते या जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार नहीं करते, तो मुझे गुस्सा आता है. सबसे कॉमन कारण, 70% केसेस में गुस्सा आने का कारण यही होता है. मानो जो इंसान मेरी बात नहीं मान रहा, तो हमें ये समझ रखनी होगी कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व और भावनाएं विचार मेरे से भिन्न हो सकते हैं. हर इंसान दूसरे इंसान से भिन्न है. हम सभी इतने मनुष्य हैं इस संसार में, किन्हीं 2 के चेहरे मिलते हैं, तो उनके विचार मेरे से भिन्न हो सकते हैं, तो हमें उनकी बात भी समझने की कोशिश करनी चाहिए. दूसरा, जो आप समझते हैं कि इनको मेरी बात माननी चाहिए, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हैं, बच्चे हैं, चाहे आपके कलीग्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, 10 में से 9 बार वो आपकी बात मानते ही हैं. जिनसे आप अपेक्षा रखते हैं कि इनको मेरी बात माननी चाहिए, नॉर्मली जो बिहेवियर चलता है वो इस तरह से चलता है. कभी एक बार ही ऐसा होता है जब वो समझते हैं वो राइट है, आप गलत हैं, और अब आपको उनकी बात समझनी चाहिए. तो सचमुच हमें उनका पक्ष सुनना चाहिए, और अगर वो जेन्युइनली राइट हैं तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हम भी हमेशा दूसरों की बात नहीं मानना चाहते. कई बार हम भी समझते हैं हम राइट हैं, इनको मेरी बात सुननी चाहिए, तो यही बात उनके लिए भी सही होती है. और इस तरह से आपसी संबंधों में, चाहे वो वर्क प्लेस पर हैं, चाहे वो हम फैमिली में हैं, आपसी समझ से ये गुस्से की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है. फिर टू कंट्रोल अदर्स, ये भी हम करते हैं. हम सोचते हैं वर्क प्लेस पर काम कराना है, काम कराने के लिए तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, बिना गुस्सा किए तो लोग काम करते ही नहीं है. सही है या गलत है? गलत है. जो समझते हैं गलत है वो हाथ उठाएं, और जो समझते हैं सही है वो हाथ उठाएं. कम विज्ञान सरोवर में बैठे हैं आप तो जरूर इस बात को समझ रहे होंगे. या फिर बच्चों के लिए, जैसे आपने कहा, बच्चों के ऊपर भी हमें गुस्सा आता है और उनको कंट्रोल करने के लिए हम इसे यूज करते हैं. तो यहां हमें समझना होगा कि अगर हम दूसरों को गुस्सा करके काम करवाते हैं, तो वो भय के कारण कुछ नहीं कहेंगे। आप अधिकारी हैं, आपके सामने वो चुप रह जाएंगे, लेकिन उनकी मनोभावनाएं आपके प्रति बदल जाती हैं। उनका जो नेगेटिव माइंडसेट होता है गुस्से के कारण, उससे उनकी एफिशिएंसी कम होती है। वो जो दिल से काम करेंगे और मजबूरी से काम करेंगे, फर्क होगा या नहीं होगा? गुस्से से आपने काम कराया तो वो कभी भी दिल से काम नहीं करेंगे, और अगर क्रिएटिविटी का काम है तो क्रिएटिविटी भी कम हो जाएगी। फिर आपके प्रति जो रिस्पेक्ट कम हुआ, उसके साथ साथ मन में थोड़ा कहीं ना कहीं बदले की भावना रहेगी, और वो अवसर ढूंढते हैं। जैसे ही उनको अवसर मिलेगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर देंगे। तो लॉन्ग टर्म में नुकसान हुआ या फायदा हुआ? नुकसान ही होता है। फिर मानो कोई मुझसे गुस्से से काम कराता है तो मुझे कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है कोई हमसे गुस्से से बात करता है काम कराने के लिए? हम सोचते हैं काम तो करना ही है ना, इस बात को थोड़ा अच्छी तरह भी कह सकते थे। तो यही बात दूसरों के लिए भी सही है, काम करने ही आते हैं, लेकिन हमें काम करवाना है। अगर हम सही भाषा प्रयोग करके काम करवाते हैं तो उनको ज्यादा अच्छा लगता है। हर इंसान अपने जीवन में लव एंड रिस्पेक्ट चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो। बच्चों को कंट्रोल करते हैं, ज्यादा कारण होता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, एग्जाम्स के दिन हैं, या आप जो चाहते हैं ये सही है, ऐसा ही इनको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं बच्चे इंटरनेट पे लगे हुए हैं, या वीडियो गेम्स में लगे हुए हैं, या टेलीविजन में लगे हुए हैं, लेकिन ये गलत आदतें हैं, और आप चाहते हैं कि ये आदतें बच्चों में ना रहें। अब आपने गुस्सा करके उनको एक बार आपने प्यार से कहा नहीं सुना, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम प्यार से कहते हैं तो बच्चों पर उसका असर नहीं होता है, तो आपने गुस्सा किया, और गुस्से में हमें भी पता नहीं होता कि हम क्या क्या बोलते जा रहे हैं। नालायक है, बेवकूफ है, गधा है, पागल है, जो भी मन में आता है उस समय हम वो शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं सुधरेगा, हाँ इससे तो ये होता ही नहीं, तो अच्छा था, पता नहीं क्या क्या हो ना, जो भी, मतलब अब वो भाषा ही अलग होती है। और कई बार वो बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, उतना उनका विवेक विकसित नहीं होता है, वो ये नहीं समझ पाते कि हमें दिल से नहीं कह रहे हैं, हाँ गुस्से में इनका कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात हमसे कह रहे हैं, लेकिन वो दिल पे लगा लेते हैं। और जब वो दिल पे लगाते हैं और बार बार इन बातों को सोचते हैं कि मेरे पिता ने ऐसा कहा या मेरी माँ ने ऐसा कहा, तो कई बार सचमुच वैसा ही उनका जीवन बनने लगता है, वो वैसा ही बन के आपको दिखा देते हैं। और फिर ऐसे बच्चे कई बार बड़े होने के बाद आपसे गुस्सा करना सीख लेते हैं। वो बात मनवाने के लिए क्या करना है, गुस्सा करना है, थोड़ा बड़े होते ही वो पलट कर आपका सामना करने लगते हैं। फिर आप सोचते हैं कि यही ये बच्चे हैं, ये आजकल के बच्चों का ये हाल है। और कभी भी माता पिता और बच्चों के बीच का विश्वास नहीं बन पाता है। लेकिन अगर हमें उनसे अपनी बात मनवानी है तो हम उन्हें प्यार से ही समझाएं, उनको हम समय दें, और ये जानने की कोशिश करें कि वो जो कर रहे हैं वो ऐसा क्यों करते हैं और हमारी बात क्यों नहीं मान रहे। कहते हैं कि बचपन से लेकर 9 साल की आयु तक आप बच्चे के साथ एक प्रिंस की तरह व्यवहार करो। जब वो समझदार होता है, एडोलेसेंट होने लगता है, उस समय उसके बिल्कुल टीचर बनकर रहो, सिखाओ, वो संस्कार देने का समय होता है, पूरी तरह से संस्कार दो। और फिर 14 साल की उम्र के बाद उनके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करो। दोस्त की तरह व्यवहार करने का मतलब उनकी क्या भावनाएं हैं, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि आज के समय में जनरेशन गैप बहुत फास्ट बढ़ता है। इतने ज्यादा साइंस के साधन जो आज हैं, शायद आज से 10 साल पहले बिल्कुल नहीं थे। तो वो जो साधन समझते हैं वो आप नहीं समझते हैं। वो क्या समझते हैं, हमारे माता पिता इस फील्ड में बिल्कुल बिल्कुल हमारे से अनाड़ी हैं, तो इसीलिए वो आपको ओवरपावर करने लगते हैं उन बातों को। तो जब आप उनको सुनते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं, और फिर उसके बाद उनको समझाते हैं कि इनके नुकसान और फायदे क्या हैं, तो फिर बच्चे आपकी बात को समझने की कोशिश करते हैं। उसमें हमें धैर्य रखना पड़ता है, हमें अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अगर वो थोड़ा पेशेंस हम रख पाए तो आप अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन कर पाएंगे और वो आपकी बात पर विश्वास भी करेंगे और उसे मानेंगे भी सही। When injustice is observed, अन्याय होता है कभी, partiality होती है जिसे हम पक्षपात कहते हैं, अगर हम गुस्सा करेंगे तो कभी भी हम अन्याय को नहीं जीत सकते। गुस्सा करने से अन्याय और ही बढ़ेगा, लेकिन जो पक्ष आपका है, जिस व्यक्ति से वो संबंध रखता है, आप उनके सामने रखिए। हो सकता है तो आप थर्ड पर्सन को भी इन्वॉल्व कर लिए, कोई न्यूट्रल व्यक्ति को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, तब हो सकता है कि समाधान मिले, लेकिन गुस्से से उसका समाधान नहीं होगा। When someone lies, झूठ बोलता है कोई, जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं, आपका बहुत समीप है, करीबी है, और वही आपको धोखा देता है ना, झूठ बोलता है, तो फिर बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसी स्थिति में दो बातें होती हैं, एक तो ये होता है कि हम ही उनको झूठ बोलवाने के जिम्मेवार होते हैं, खासकर बच्चे। अगर बच्चे आपको झूठ बोलते हैं, आपको पता है कि आज आपका बेटा कॉलेज नहीं गया, आपको न्यूज मिल गई, खबर मिल गई, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर चला गया या फिल्म देखने चला गया या पार्टी किया उसने जो भी, और घर में आकर के आपको झूठ बोलता है, आपको सच मालूम है लेकिन झूठ बोलता है, तो क्यों झूठ बोलता है? उसको पता है कि अगर मैंने सच बोला तो मेरे पिता मेरे साथ कैसा व्यवहार करने वाले हैं, कितने नाराज होने वाले हैं, कितना गुस्सा करने वाले हैं, और हो सकता है तो मुझे मार भी शायद पड़ जाए। तो वो उस भय से कभी भी सच नहीं बोलेगा। अगर उसको ये पता है कि अगर मैंने सच बोला तो भी मेरे पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन चुपचाप मेरी बात सुन लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, मतलब मैं जो भी हूं जैसा भी हूं वो मुझे स्वीकार करेंगे, तो वो आपको आकर के बिल्कुल सच सुनाएगा कि आज मैं कॉलेज की बजाय कहां गया। आपने समझा? तो हमारे व्यवहार के कारण अगर बच्चों में भय है तो वो कभी भी आपको सच नहीं बोलेंगे। तो पहले हमें व्यवहार बदलना होगा। फिर दूसरी बात, मानो कोई हमारे फ्रेंड्स हैं या कोई भी, जैसे पति पत्नी का संबंध है, उसमें भी कभी कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल शेयर किया, तो हम उनको समझाने की कोशिश करें। गुस्सा करने से वो अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे, लेकिन यदि हम उनको समझाते हैं और वो बात उनको समझ में आती है तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आती तो भविष्य के लिए आप ऐसे लोगों से सावधान रहे जो आपको धोखा दे सकते हैं। Why losing in discussion or negotiation? ये भी कई बार होता है, हम किसी विषय पर किसी से चर्चा कर रहे हैं, जनरली होता है, और हमें लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका ज्ञान कहीं हमसे अधिक है, हम उतने सक्षम नहीं हैं, तो फिर हमें अगर अहम है और हम उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते तो अपनी बात के लिए हम गुस्सा करने लगते हैं। मेरी बात ही सही है इसको सिद्ध करने के लिए पहले वॉल्यूम तेज करते हैं और फिर गुस्सा करते हैं। लेकिन अगर हमें ये समझ में आता है कि इस विषय पर मेरा ज्ञान कम है तो फिर हम उसे स्वीकार कर लें और सोचें कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम बात करेंगे तो पहले जब मुझे पूरी नॉलेज होगी तभी हम इस पर बात करेंगे। डिससेटिस्फेक्शन, जीवन में जो लोग असंतुष्ट होते हैं उन्हें भी जल्दी गुस्सा आता है, और असंतुष्ट लोग कौन होते हैं? जो अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करते रहते हैं। अगर हम कभी भी दूसरों से अपनी तुलना करेंगे तो जीवन में प्रसन्न रह ही नहीं सकते, क्योंकि हर दो इंसान अलग हैं। जैसे हमने बात किया, हर मनुष्य के कर्म और प्रारब्ध अपने अपने हैं, और भगवान ने हरेक को कुछ ना कुछ विशेष प्राप्ति दी है। वो प्राप्ति हमें नहीं हो सकती जो दूसरे को है, और जो मुझे है वो दूसरे को नहीं होती है। हम सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जैसे सभी डॉक्टर नहीं होंगे, सभी इंजीनियर नहीं होंगे, सभी आर्टिस्ट नहीं होंगे, वो सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो सब अलग अलग हैं, और ये संसार एक वैरायटी ड्रामा है और उसमें हरेक का अपना अपना रोल है। तो मुझे अपने रोल को समझना है और उस रोल के अनुसार मुझे अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना है, मुझे अपने जीवन में कहां पहुंचना है। कहते हैं बीइंग इन्फीरियर इज डिफरेंट देन फीलिंग इन्फीरियर। हो हो सकता है कि किसी बात में हम किसी से कम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उसे महसूस करें। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके हाथ पांव में कोई डिफेक्ट होते हैं और वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह पूरी तरह कार्य नहीं कर पाते। फिर भी ऐसे लोगों ने भी जीवन में बहुत महान काम किए हैं जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी कम समझा नहीं। भले उनकी शारीरिक क्षमताएं कम रही, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने को कम नहीं समझा। जैसे हम स्टीफन हॉकिंस का नाम सुनते हैं, आप में से भी किसी ने सुना होगा, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उनके सिर के नीचे से, गर्दन के नीचे से जो पूरा शरीर है उसको लकवा है, लेकिन फिर भी आज भी वो यूके में नंबर वन साइंस के प्रोफेसर हैं और उनकी बातों को वो कंप्यूटर के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम उसे महसूस करें। हम अपने जीवन में कैसे अपनी योग्यताओं को बढ़ा करके प्रोग्रेस कर सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। ओवरवर्क, जो लोग बहुत कार्य करते हैं, थक जाते हैं, ऐसे लोग भी छोटी छोटी बातों पर चिढ़ते हैं। फिर उनसे कोई जरा भी बात कोई कहेगा, थके हुए होते हैं, एनर्जी नहीं होती है, तो रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो यहां हमें यह समझना होगा कि ठीक है, हम बहुत थक गए हैं, कोई भी मेरे से बात करेगा तो भी मुझे शांति से जवाब देना है। ये अपने आप को हमें समझाना होगा। कई बार हमें सेल्फ टॉक करनी पड़ती है, अपने आप से बात करनी होती है, और जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हम परिवर्तन कर लेते हैं। सिक पीपल, जो बीमार होते हैं, उनकी सहन शक्ति शारीरिक कमजोरी के कारण एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम होती है। वो लोग भी जल्दी गुस्सा करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा नहीं कि हम भी गुस्सा करने लगे, कि उनके प्रति हमारी सहानुभूति और प्रेम की भावना रहनी चाहिए। कई बार घर में बुजुर्ग लोग होते हैं जो अधिक आयु वाले होते हैं, वो भी शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और उनको भी छोटी छोटी बातों में ज्यादा गुस्सा आता है, तो उनकी स्थिति भी हमें समझनी चाहिए। मानो हमारे माता पिता ही हैं या इन लॉज हैं, जो भी हैं, अगर वो ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं आयु के कारण, तो हमें उनके प्रति कोऑपरेटिव होना चाहिए, उनकी स्थिति को समझना कि उनके साथ हम भी गुस्सा करते रहें, क्योंकि एंगर इज इन्फेक्शियस, लग जाता है, हमें समझ भी नहीं आता, और जैसा वो गुस्सा कर रहे हैं उससे भी ज्यादा। नॉर्मली हमारा बिहेवियर क्या होता है, टिट फॉर टैट, इसने मुझे एक बात कही तो हम दो कहेंगे, दो कही तो चार कहेंगे, लेकिन नहीं, हम उनकी स्थिति को समझें और उस अनुसार ही हम उनके साथ व्यवहार करें। एंड क्रिटिसाइज बाय अदर्स, किसी ने मेरी आलोचना की, मेरी निंदा की, तो हमें वो व्यक्ति दुश्मन की तरह ही लगता है ना? और अगर पीठ पीछे हमने सुन लिया कि पीठ पीछे मेरे प्रति ये बात कही गई, तो हम और ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। लेकिन यहां भी हम थोड़ा सकारात्मक सोचें। आपने सुना भी होगा इसके ऊपर, कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। वो हमारा मित्र हो सकता है, निंदा करने वाला हमारा मित्र हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है? वो हमारी कमियां बता रहा है, लेकिन हमें वो मित्र लगता नहीं है। लगता तो वो हमें एनिमी ही है, लेकिन अगर हम सचमुच रियलाइज करें कि जो व्यक्ति मेरे बारे में बात कर रहा है वो हमेशा उस बात को बड़ा चढ़ाकर कहता है, वो कमी उतनी होती नहीं है हमारे अंदर, कई बार 1% ही होती है। कहने वाला उसको बहुत मैग्नीफाई करता है, मैग्नीफाई लेंस की तरह काम करता है वो। आप ऑफिस में बिल्कुल टाइम पर जाते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, समय पर अपने प्रोजेक्ट्स पूरा करते हैं, पर कोई कारण से आप 2-3 दिन लेट हो गए, जो आपका क्रिटिक होगा वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और वो तुरंत आपकी कंप्लेन करता है, ये तो रोज ही लेट आता है। अब बात ऐसी है नहीं, लेकिन उस बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कह दिया गया। तो मानो अगर उसमें रियली मेरी कोई थोड़ी बहुत केयरलेसनेस हुई है, हम सेल्फ रियलाइजेशन करें, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और हमारी कमी है उसको हम दूर करें, तो उससे हमें प्रोग्रेस के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर वो कमी नहीं है हमारी, कई बार कोई गलत फहमी भी पैदा होती है जैसे मैंने कहा सचमुच वो बात वैसी नहीं होती है। कुछ लोग नीचा दिखाने के लिए भी, हमारी प्रस्तुत कम करने के लिए भी ऐसे कार्य करते हैं युष्यावश, तो फिर हम उन बातों पर ध्यान नहीं दें, हम उन्हें सुनते हुए भी नहीं सुने, अपने मन पर नहीं लें, क्योंकि वो कमी हमारे अंदर है नहीं। एक बार ऐसे ही महात्मा बुद्ध एक स्थान पर गए और वहां जब उनका प्रवचन पूरा हुआ तो उनके सामने एक उनका विरोधी आया। उसके मन में काफी बातें थी उनके प्रति और उन्होंने वो नॉन स्टॉप कहना शुरू कर दिया। जब वो थक गया तो उसने सोचा कि अब महात्मा बुद्ध भी कुछ जवाब देंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठे थे, स्माइल कर रहे थे। तो वो व्यक्ति उनके सामने गया और उनको पूछा, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा आपको? तो उन्होंने स्माइल करके उसको जवाब दिया कि देखो भाई, अगर आप किसी को कोई चीज देते हो और अगर वो नहीं लेता है तो वो कहाँ रहेगी? तो उसको समझ में आ गया कि इन्होंने मेरी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया है। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो कमी हमारे अंदर नहीं है तो हम उस पर ध्यान नहीं दें। हाँ, यदि उसके बारे में हमें कुछ समझाना है तो भले हम शांत भाव से उसको समझाने की कोशिश करें, समझते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर उसे हमें लेट गो कर देना चाहिए, उस बात को हम खत्म कर दें। फूड हैबिट्स, आप में से भी किसी ने ये बात कही, ये देखा गया है कि जो लोग मांसाहार करते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, वो शाकाहारियों की तुलना में जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। उसका कारण है कि जो मांस होता है, जिस पशु को मारा जाता है, क्योंकि वो एक लाइफ है और जब उसे मारने के लिए ले जाया जाता है तो उसे आभास तो हो जाता है कि मुझे मारा जा रहा है, उसका शरीर रिस्पॉन्ड करता है और उसके शरीर में वो केमिकल्स बनते हैं जो स्टिमुलेंट्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर में भी स्ट्रेस के समय पर स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, तो ऐसे ही जब जानवर में वो फियर और स्ट्रेस होता है तो उसके शरीर में भी वो केमिकल्स बनते हैं जो उसकी मांसपेशियों में आ जाते हैं और उसी समय उसको मार दिया जाता है। फिर उसी मांस को जब इंसान खाता है तो वही जो हानिकारक जो केमिकल्स हैं वो उसके ब्लड में चले जाते हैं और ये एफ्रोटाइजिंग एजेंट है और ये सारे हमारे शरीर को, ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और इसीलिए जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। दूसरा, मांस के अंदर जो प्रोटीन होता है, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, वो जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे यूरिक एसिड और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये नाइट्रोजन वेस्ट भी हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और इसीलिए देखा कि जो मांसाहारी जातियां, अगर हम कल्चरल डिफरेंस देखें तो जो मांसाहारी जातियां होती हैं वो शाकाहारी जातियों की तुलना में ज्यादा हिंसक होती हैं। अगर हम भारत की संस्कृति में देखें तो यहाँ 90% लोग वेजिटेरियन होते हैं। आजकल थोड़ा ये रेशो चेंज हो रहा है क्योंकि हम भी वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें ज्यादातर लोग जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ज्यादा परसेंटेज में। तो आप देखेंगे उनकी संस्कृति में कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं भी दो लोग साथ में ज्यादा लंबे समय तक रह ही नहीं सकते, उनकी जो शादियां हैं वो भी जल्दी जल्दी टूटती हैं। वहां आप किसी की भी हिस्ट्री देखेंगे तो दो चार तलाक और दो चार शादी तो आम बात है, बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रह सकते। लेकिन भारत में हम देखते हैं इतना सामाजिक या पारिवारिक जो स्थायित्व है वो अभी भी है। भले ही अब डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, उसका कारण है कि अब हमारी फूड हैबिट्स भी चेंज होती जा रही हैं। हमारी लाइफ में भी वही नॉन वेजिटेरियन और फास्ट फूड पैटर्न जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अन्न का मन पर असर होता है, इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अगर सात्विक अन्न है तो हमारे मन की भावनाएं उसी प्रकार से रहती हैं। फिर भी अगर हम मानो गुस्सा आ रहा है और हम कारण नहीं समझ पा रहे, कई बार जैसे मैंने बताया ना, हम सीधा रिएक्ट करते हैं एकदम, तो हम थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर दे। हाँ, हम सोचे हम अपनी बात जरूर कहेंगे लेकिन एक दिन के बाद कहेंगे, पर अगर एक दिन जितना धैर्य नहीं है मेरे पास तो हम सोचें चलो एक घंटा ही सही, एक घंटा भी नहीं तो कम से कम कुछ मिनट ही सही। अगर हमने कुछ मिनट उसको पोस्टपोन कर दिया तो उसमें दो बातें होती हैं। एक बात तो कि हमें उसने समय में ये समझ आ जाता है, क्योंकि मन तो चलता रहता है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि सारी गलती उसकी नहीं है, मेरी भी गलती है, तो मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए ना, तो वो परमानेंट ही पोस्टपोन हो सकता है। पर आपको लगता है नहीं इनकी गलती है, इनको बताना ही चाहिए, अगर नहीं बताएंगे तो यही गलती दोबारा होगी, तो हम तब तक हम देखते हैं कि हमारा आवेश कम हो जाता है और वही बात फिर हम शांति से कहते हैं या थोड़े अच्छे शब्दों में कहते हैं और वो बात स्वीकार की जाती है। लेकिन अगर हम तुरंत कहते हैं और गुस्से में ही कहते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति गलती होते हुए भी स्वीकार नहीं करता है और ही अपनी बात को सिद्ध करता है, हमारी समस्या बढ़ जाती है। अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा आपने, वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उस समय अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। तो गृह युद्ध में उनको एक समाचार मिला कि वो युद्ध हार रहे हैं और ये भी उनको पता चला कि जो कमांडर को उन्होंने निर्देश दिए थे वो निर्देशों का सही तरह से पालन नहीं कर रहे। तो बहुत गुस्सा आया उनको उनके ऊपर और उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया, क्योंकि उस जमाने में फैक्स ईमेल तो नहीं होते थे। तो वो लेटर में जो उस समय गुस्से में उनके मन में आ रहा था वो लिखते जा रहे थे और इतने में कोई इमरजेंसी आई, उनको उठ के जाना पड़ा, तो वो जो लेटर था वो उनके डेस्क पर रह गया। फिर थोड़े समय बाद जब वापस आए तब तक उनको न्यूज मिल चुकी थी कि अब वो युद्ध जीत रहे हैं। तो उनका लेटर पर ध्यान गया और जब वो लेटर दोबारा पढ़ा उन्होंने तो इतना उनको अच्छा लगा कि मैंने ये पत्र नहीं भेजा, अगर ये पत्र चला जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तो वो सिर्फ थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, इसके कारण वो जो गलत बातें उन्होंने लिख दी थी उस पत्र के अंदर वो उस व्यक्ति तक पहुंचने से रह गई। तो कई बार हम ये अनुभव करते हैं कि मैंने इस समय ये बात नहीं कही, बहुत अच्छा हुआ, अगर कह देते तो शायद ज्यादा नुकसान हो जाता। तो थोड़ा पोस्टपोन कर दें उसको। अवेयरनेस, अगर हमें मालूम है कि इस चीज को लेने से मुझे बहुत हानि होती है, जैसे मानो आप हेल्थ चेकअप कराते हैं और डॉक्टर आपको कहते हैं आपको ब्लड प्रेशर हाई होने लगा है या आपको शुगर आई है, तो आप ये परहेज रखिए, आप नमक नहीं खाइए या हाँ जो भी, मतलब वो आपको परहेज बताते हैं, तो हम कंट्रोल तो नहीं कर पाते एकदम, लेकिन फिर भी ध्यान रखते हैं कि मुझे ज्यादा नमक नहीं खाना। ऐसे नहीं नमक खाना बंद कर देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि इतना खाते थे अब इतना नहीं खाएं, या बहुत स्मोक करते थे तो अब थोड़ा स्मोकिंग को कंट्रोल करें। जितना हमें वो नॉलेज होती है, अवेयरनेस हो जाती है, उतना हम उससे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहां भी हमने समझा क्रोध करने से हमें कितनी हानि होती है, तो जो वो रियलाइजेशन होता है तो हम क्रोध कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। एक बार ऐसे ही स्मोकिंग की बात निकली तो एक व्यक्ति को लंग कैंसर हुआ, ब्रिटेन की बात है, तो उसने जिस कंपनी की वो सिगरेट पीता था उस कंपनी के ऊपर उसने केस कर दिया कि मैं सिगरेट पीता था इसलिए मुझे लंग कैंसर हो गया। तो वो कंपनी ने कहा कि इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो पैकेट पर लिखते हैं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपने क्यों पिया, आपने पढ़ा नहीं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसने कहा आपने लिखा है हानिकारक है, अब हानि तो छोटी मोटी होती है, ये कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है और आपको इस कैंसर के इलाज के लिए मुझे पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो वो कोर्ट में कंपनी हार गई और उसको सचमुच उसके पूरे कैंसर का इलाज करवाना पड़ा। बाद में छापना पड़ा, मतलब उस पैकेट पर, कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, शायद आजकल छपता है सिगरेट के पैकेट पर, सिगरेट पीने से कैंसर होता है और कैंसर भी क्या होता है वो भी शायद फोटो भी छापते हैं उसका। तो जब ये छाने लगा मार्केट में, तो अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ संघ में आकर के ये काम शुरू करते हैं, उनको रियली मालूम नहीं होता कि ये आगे जाकर भविष्य में हमें इतना स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन जब समझ में आता है तब तक तो आदत पड़ चुकी होती है और उसको छूटना बहुत मुश्किल होता है। तो वो पैकेट्स देखने के बाद बहुत यूथ ने, जिनको नहीं मालूम था कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, 30% लोगों ने वो सिगरेट पीना छोड़ दिया। अवेयरनेस, जैसे ही ये नॉलेज मिलती है कि इससे इतना नुकसान होने वाला है तो हम तुरंत उसके लिए कदम उठाने लगते हैं। ऑब्जर्व साइलेंस और लीव दैट प्लेस इमीडिएटली विथ साइलेंस. मानो कोई गुस्सा कर रहा है और उसके सामने आप हैं इन्फेक्शन, तो या तो आप शांत रह जाइए, और नहीं रह सकते तो चले जाइए वहां से. अगर सामने रहेंगे तो वो लग जाएगा, और आप भी कब बोलने लग जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा. ऐसे ही एक बार एक पति पत्नी, वो दोनों ही बहुत गुस्से वाले थे. एक गुस्से वाला हो और दूसरा शांत हो तो चल जाता है, लेकिन दोनों ही बहुत गुस्से वाले होते हैं तो फिर स्थिति बहुत बिगड़ती है. और ऐसे ही उनके घर की स्थिति थी. तो पति तो काम पर चले जाते थे, वो बेचारी सारे दिन घर में बहुत अशांत रहती थी. एक दिन उसकी पड़ोस की बहन आई, उसने कहा कि बहन जी हमारे घर में हमने आज कथा रखी है, आप कथा में आइए. वो कथा में जाती है और जो कथा कराने वाले थे उनका सब सुनती है वो, उसको थोड़ी शांति मिलती है. फिर वो उनसे बात करती है अपनी प्रॉब्लम के बारे में कि हमारे घर में ये समस्या, आप मुझे कुछ इसका समाधान बता सकते हैं. तो वो पंडित जी थे, उन्होंने कहा देखो बहन मैं बता सकता हूं लेकिन एक शर्त है, शर्त आप मानोगी तो ही मैं बताऊंगा. तो आप मुझसे वादा करो कि मैं जो कहूंगा वो आप करोगी. तो उसने कहा कि मुझे तो शांति चाहिए मेरे घर में, आप जो कहेंगे मैं करूंगी. तो उन्होंने एक पानी की बोतल मंगाई और उसको दिया, कहा कि जब आपके पति गुस्सा करते हैं तो इसमें से कुछ घूंट पानी आप अपने मुंह में रखना, पानी पीना नहीं है, पानी मुंह में रखना है. वो भी समझ गई जैसे आप समझ गए. आप सोचा क्या करूं, क्योंकि पहले से ही उन्होंने वादा करवा लिया. तो वो पानी लेकर गई घर में. अब वो तो रोज की ही बात थी, कोई बात हुई पति ने गुस्सा करना शुरू किया तो उसने प्रॉमिस किया था इसलिए मुंह में पानी रखा. बोलना तो चाहती थी लेकिन पानी था मुंह में तो बोल नहीं सकती थी, तो चुप रही. पति ने सोचा कि क्या हुआ ये आज शांत कैसे है, ये तो नई बात हो गई. और जोर जोर से गुस्सा किया कि कुछ बोले, क्योंकि आदत थी सुनने की. बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं बोली, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया. फिर दूसरी बार ऐसा हुआ तो फिर देखा कि नहीं बोल रही है, बिल्कुल शांत है. तो उनको आश्चर्य होने लगा कि ऐसा क्या हुआ है जो बिल्कुल शांत हो गई है, इतना कैसे बदल सकती है. तो फिर जानबूझ के ट्राई किया कि देखो किसी भी समय बोलती है. फिर वो बेचारी क्योंकि प्रॉमिस करके आई थी उनसे तो बार बार पानी मुंह में रख लेती थी. और ऐसे कुछ दिन गुजरे तो धीरे धीरे उन्होंने ये बात समझ लिया कि इसने सचमुच अपने आप को बदल लिया है. तो अब उनका ध्यान अपनी तरफ जाने लगा कि अगर ये बदल सकती है तो मैं शायद छोटी छोटी बातों में ज्यादा ही गुस्सा करता हूं, मुझे भी ध्यान देना चाहिए. और जब उन्होंने ध्यान दिया तो फिर उनका भी गुस्सा कम होने लगा, तो घर में शांति होने लगी. ये बहन बहुत खुश हुई और वो गई उनके पास और उनको सारी रिपोर्ट दी, क्योंकि उनका पानी पूरा हो चुका था. तो उसने बोला कि आपने जो मुझे बताया उसने सचमुच काम किया है और मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, लेकिन वो पानी खत्म हो गया है. तो उन्होंने कहा कि वो पानी कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, वो पानी तो सिंपल पीने का पानी था, लेकिन आपको सिखाने के लिए था. आपने सीख लिया है जब पति गुस्सा करते हैं उस समय आप शांत रह जाओ. तो देखा कितने अच्छे परिणाम मिले, आगे के लिए भी आप ऐसे ही करेंगी तो आपका घर सदा ही स्वर्ग रहेगा, है ना. लेकिन कई भाई बहने हमें कहते हैं कि बहन जी ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सचमुच जब व्यवहारिक जीवन में हम आते हैं तो ये करना हमारे लिए सहज नहीं है. क्या कहेंगे, कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारी चॉइस है हम कैसा बिहेव करते हैं. देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी के ऊपर है कि अगर हम अपने जीवन में सहन शक्ति, धैर्य, शांति, खुशी, प्रेम और रहम भाव, इन गुणों का विकास कर लेते हैं तो हमें गुस्सा ही नहीं आता है. हम प्रकृति में एक गुण देखते हैं कि जब पेड़ फलों से लगता है तो बच्चे उसको पत्थर मारते हैं, लेकिन फिर भी पेड़ क्या देता है, फल देता है, है ना. तो जो प्रकृति है उसमें भी ये गुण है कि वो पत्थर की चोट सहकर के भी मीठा फल दे सकती है. तो मनुष्य जो भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है, क्या वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता? कर सकता है नहीं कर सकता। नॉर्मली हम कैसे बिहेव करते हैं, जैसे मैंने कहा एक कहा तो दो, दो का चार, ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना है, इसको हम सहन शक्ति नहीं कहते। जीवन की जो समस्याएं हैं वो इससे हमारी बढ़ जाती हैं। लेकिन जो भी महान पुरुष हुए हैं या जो भी स्पिरिचुअल लोग इस संसार में हुए हैं या जो भी आध्यात्मिक महापुरुष जिन्हें हम कहेंगे, उनके जीवन के विशेषता थी कि उनके साथ किसी ने भी कैसा भी किया, कैसा भी व्यवहार किया, लेकिन फिर भी वो सदा उनके प्रति प्रेम, दया, करुणा, रहम, क्षमा का व्यवहार करते रहे। ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ाया, क्या कहा उन्होंने, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, है ना। उस समय भी क्षमा भाव, जबकि कितना बुरा व्यवहार हो रहा है, ऐसा कह सकते थे ना, भगवान तू इनका सत्यानाश करना, हा? सारी जिंदगी मैंने इनकी सेवा की और आज मेरे साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा क्षमा करना। और यही कारण है कि उन्हें भगवान का दर्जा मिला और आज संसार के सभी गिरजाघर में ईसा मसीह की आराधना होती है। वो पूज्य पद कैसे मिला, उस गुण के कारण। तो इंसान चाहे तो अपने गुणों को, अपनी महानता को बढ़ा सकता है। ये एक साधारण व्यवहार है, जिसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है। लेकिन उनकी स्थिति को समझकर अगर हम सही व्यवहार करते हैं तो हम हमेशा लीडर होते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं और आप आदर्श बन जाते हैं, लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा जो जिन्होंने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो दादी जी हमारी रही उनके बाद दादी प्रकाशमणि जी जो मुख्य प्रशासिका रही ब्रह्मा बाबा के बाद, उनके साथ कई वर्ष मुझे रहने का अवसर मिला है और हमने उनके जीवन को बहुत करीब से देखा। हमने देखा कभी भी किसी भी स्थिति में, हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेटर तो एक्सक्यूज है, उनके गुस्सा करने का एक्सक्यूज होता है, हाँ, ये ऐसा गलती करेंगे तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, हाँ, बिना गुस्सा किए आप अनुशासन कैसे लाएंगे, आप व्यवस्था को ठीक कैसे चलाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी संस्था की हैद होते हुए भी हमने कभी भी गुस्से से किसी से कार्य करवाते हुए उन्हें नहीं देखा। इतनी वो रहम की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सहन की शक्ति, या जो भी कहें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, वो उनके अंदर रही। और वो अध्यात्म से, योग अभ्यास से हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं, जो आपने यहाँ सीखा भी है और सीख भी रहे हैं। देन एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, वीकनेसेस एंड अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स। जहां ईगो प्रॉब्लम की बात आती है, आप में से भी किसी ने शेयर किया कि ज्यादातर अहम भाव के कारण हम अपनी गलतियों को नहीं मानते। गलती हम सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होती है, लेकिन हम अपनी गलतियों को नहीं मानना चाहते क्योंकि हम समझते हैं हमें कमजोर समझ लिया जाएगा या मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो अपने नाम को बचाने के लिए हम अपनी गलती को कवर करते हैं और थोड़ा सा अपना अहम भाव दिखाते हैं। लेकिन अगर मेरे से गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हम सॉरी कहें, बात वहीं खत्म हो जाती है और गुस्से की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती फिर। एक्टिंग करना, कई बार हम ये भी देखते हैं क्योंकि आज का जो समय है ना उसे कलयुग का समय कहते हैं। कईयों के जो संस्कार होते हैं वो इतने प्रबल होते हैं कि अगर आप उनसे प्यार से बात करते हैं तो, जैसे हम बात कर रहे थे ना, प्यार से बच्चों से भी बात करते हैं तो शायद एक बार में उन्हें वो बात समझ में नहीं आती और फिर हमारे उस व्यवहार का, जिसे लोग सॉफ्ट समझते हैं, उसका फायदा लेने लगते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रेम से कार्य कराने के कारण लोग हमारा फायदा लेने लगे हैं या अनुशासन कायम नहीं रह पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ी सी एक्टिंग कर सकते हैं, जिसको आंख दिखाना कहते हैं। माना मन से गुस्सा नहीं है, मन में नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, जो रियल गुस्सा होता है उसमें हमारा मन पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है और हमारे बॉडी फिजियोलॉजी को चेंज करता है। लेकिन हम सिर्फ अगर अपना रूप दिखाते हैं, थोड़ा ऑफिशियल रूप दिखाते हैं कि कैसा भी व्यवहार नहीं चलेगा या किसी भी तरह से कार्य किया जाए वो नहीं चलेगा, उतना हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप में से कोई एक्टिंग कर सकता है, सामने आकर एक गुस्सा करे और दूसरा गलती करे। आएंगे कोई? नहीं, भाई जी आए हैं, आप गुस्सा करेंगे या सुनेंगे, एक्टिंग करेंगे, तो कोई भी एक आ जाइए इनके सामने। उन्होंने इशारे में बता दिया कि कोई गुस्सा भी कर रहा है तो हमें कैसे बिहेव करना है, और ही उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखा दी है। तो यहाँ से यही सीख कर जाना है कि पलट के गुस्सा नहीं करना है, लेकिन एक्टिंग करने का मतलब हम आपको ये बताना चाहते थे कि इनकी फीलिंग्स आप नोट करो। तो जो हम एक्टिंग करते हैं उसमें हमारे जो एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं वो शुभ भावना वाले दिखाई देते हैं कि हम चाहते हैं सही काम हो, रियली हम आपके प्रति बुरा नहीं सोचते हैं। तो वो फीलिंग से उनकी भी भावनाएं हमारे प्रति नहीं बदलती हैं। हाँ, ताली बजा दीजिए उनके लिए। कई बार हमें सचमुच गुस्सा दबाना पड़ता है, कई स्थितियां ऐसी होती हैं कि सचमुच हम सामने वाले के सामने नहीं बोल सकते, अगर हम बोलेंगे तो भविष्य पर उसका बुरा असर आ सकता है। कुछ भी मुंह से शब्द निकल गया, अब जैसे मानो हमारे अधिकारी हैं, उनके हाथ में पावर्स होती हैं, वो कोई भी आपके फ्यूचर के लिए एक्शन ले सकते हैं, तो हम चुप रह जाते हैं। लेकिन हमारी मनोभावनाएं जो हैं वो काफी नकारात्मक हो चुकी हैं उसकी वजह से। तो ऐसे में हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि आप अपनी भावनाओं को लिख दीजिए, जो आपके मन में उनके प्रति विचार आ रहे हैं उनको बोलिए नहीं, किसी को भी नहीं कहिए, लेकिन जब आप उसको नोट कर लेते हैं तो भी आपका मन खाली हो जाता है, और वो नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से जो हार्मफुल केमिकल्स हमारे शरीर में बन रहे हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, जो एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन बनते हैं वो अंतर आ जाता है। या फिर हाँ,
आपने बताया था,
हाँ, इसीलिए उसको एक्सप्रेस कैसे करना है मैं बता रही हूँ। हाँ, एक्सप्रेस हो गया ना, वो आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया। या फिर आप भगवान को सामने रखिए, कई बार ये बहुत पर्सनल होता है, हम किसी को भी नहीं बता सकते हैं। मानो कोई आपका कॉन्फिडेंशियल है और आपको लगता है कि इनको कह देने से कोई नुकसान नहीं होगा, ये आगे किसी को शेयर नहीं करेंगे, ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा है तो आप अपने मन की बात उनसे कहिए। पर अगर नहीं है तो आप भगवान को सामने रख करके कि हम भगवान से अपने दिल की ये बात कह रहे हैं, और वो लिख के फिर भले आप उसे फाड़कर फेंक दीजिए, लेकिन आपका वो गुस्सा एक्सप्रेस हो गया और उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। अगर हमने सप्रेस किया है तो दूसरा तरीका है कि हम कुछ फिजिकल वर्क करें, फिजिकल एक्टिविटी, या तो वॉक करें आधा घंटा। आप अगर सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले वॉक करते हैं तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इससे हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स एंड कैफेलिन्स बनते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, और जो टॉक्सिन्स बने हैं हमारी बॉडी में वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। या अगर आपको गेम्स खेलने का शौक है, बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, जिम में जाते हैं, किसी भी तरह से कुछ फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, तो वो टॉक्सिन्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कुछ फ्रूट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी, तो ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। जब गुस्सा आता है तो अपने चेहरे को दर्पण में देखिए, सबसे ज्यादा बुरे हम गुस्सा करते हुए लगते हैं, और सबसे अच्छे कब लगते हैं? स्माइल करते हुए। तो वो अपना पोस्ट जो है गुस्सा करता हुआ, वो पोस्ट अपने दिमाग में रखिए और याद करिए जब गुस्सा करते हैं कि अभी हम कैसे लग रहे होंगे। ऐसे ही एक बार एक पति पत्नी जो है वो घर में गुस्सा कर रहे थे और उनकी पूरी वॉल पर मिरर लगा हुआ था, तो एकदम उनका ध्यान गया वॉल पर, और जैसे ही उन्होंने अपने को देखा गुस्सा करते हुए, तुरंत गुस्सा करना बंद कर दिया, क्योंकि वो इस रूप में अपने आप को नहीं देखना चाहते थे। तो अगर हम वो रियलाइज करते हैं तो भी हम गुस्सा कम करते हैं। प्रेस योर चिन, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अगर गुस्सा आता है और आप उसे कुछ मिनट्स के लिए प्रेस करते हैं तो आपकी जॉ रिलैक्स हो जाती है, और आप बहुत तेज वॉल्यूम में बात नहीं करेंगे, हाँ बात करेंगे लेकिन शांति से करेंगे ना। कोई भी बात को हम शांति से कहते हैं, अच्छे शब्दों में कहते हैं, तो जैसे बताया कि वो स्वीकार की जाती है। रीप्रोग्रामिंग, संस्कारों की बात है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है बहुत लंबे समय से, गुस्से के बिना हमारा काम नहीं चलता है, या कोई गलती करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा ही, है ना। गलती उसकी नहीं, गलती मेरी नहीं, गलती उसकी है, ऐसा हम समझते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमने अपने दिमाग में बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ सिस्टम में बना रखी हैं। अगर उसको हमें इरेज करना है, उसे हमें चेंज करना है, तो हमें थोड़ा वर्क करना पड़ता है अपने ऊपर। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें रीप्रोग्राम करना होता है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। मानो हम रोज योग करते हैं, कुछ समय अपने लिए निकालते हैं, और उसमें आपको समझ में आता है कि आपका बच्चा या आपकी पत्नी या आपका कलीग या सबॉर्डिनेट जब ऐसा ऐसा करते हैं तो आपको ज्यादा गुस्सा आता है। नॉर्मली आप इतना एक्साइट नहीं होते, लेकिन इस स्थिति में हो जाते हैं। मानो उसने झूठ बोला या आपको धोखा दिया या आपकी बात नहीं मानी, जो भी रीजन है, तो आप अपने आप को वो रीजन लेकर समझाइए, जिसको सेल्फ टॉक कहा, ऑटो सजेशन दीजिए कि ये स्थिति उत्पन्न होगी तो भी मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि उसका सोल्यूशन ये है। आप अपने मन को समझाइए, जैसे अभी आपको समझाया गया कि ये स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका सोल्यूशन ये है, गुस्सा उसका समाधान नहीं है। मानो मैंने एक दो बार अपने मन को वो बात समझाई और वही स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, अभी मेरा कंट्रोल नहीं आया है, लेकिन मुझे वो बात याद जरूर आ जाएगी। गुस्सा कर गए आप, रिएक्ट कर गए, लेकिन आपने जो सोचा था वो आपको याद आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम के लिए जब आप वही स्थिति उत्पन्न होगी तो फिर आपकी इंटेंसिटी कम होगी, भले आप गुस्सा करेंगे लेकिन उतनी इंटेंसिटी से नहीं करेंगे। और ऐसे कुछ बार में धीरे धीरे जब आप रोज सेल्फ टॉक करते जाएंगे तो विद इन डेज उस परिस्थिति में भी आप अपने गुस्से पर विजयी बनेंगे। आपको लगेगा कि वही स्थिति उत्पन्न हुई लेकिन अब मुझे सचमुच गुस्सा नहीं आया, क्योंकि अब आपका वो सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग थी वो चेंज हो गई। तो इस तरह से जो हमारे संस्कार बन चुके हैं, उन संस्कारों को हम परिवर्तन करके अपने गुस्से को जीत सकते हैं। सेल्फलेस सर्विस, ज्यादा दूसरों से हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो हमारी पूरी नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा आता है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस रखने की बजाय जो भी आप दूसरों के लिए करते हैं वो निस्वार्थ भाव से कीजिए। अपेक्षा मत रखिए कि मैंने इतना किया ना इसलिए इनको भी मेरे लिए करना चाहिए, नहीं, हमने किया। अपना स्वभाव दातापन का रखिए, सदा देने की भावना रहे, लेने की भावना नहीं रहे। जितना हमारी दूसरों के प्रति देने की भावना होगी उतना हमें गुस्सा कम आएगा। कुछ स्लोगन्स याद रखें, कोल्ड आयरन विल बेंड और कट द हॉट रोड, ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। तो किसमें शक्ति है? शांति में शक्ति है। क्रोध कमजोरी है, क्रोध शक्ति नहीं है लेकिन कमजोरी है। बिलीव दैट एवरी वन कैन कंट्रोल एंगर एंड गो ऑन बिलीविंग इट। हम जरूर गुस्से पर काबू पा सकते हैं, अपने गुस्से को जीत सकते हैं, ये विश्वास रखें तो जरूर हम अपने गुस्से को जीतेंगे। ये एंगर स्कोर है, आप एक बार इसको पढ़िए और स्कोर देखिए, अपने मार्क्स काउंट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आप शांत स्वभाव के हैं या बहुत गुस्से वाले स्वभाव के हैं या मीडियम है। अगर हम बहुत गुस्से वाले उसमें जाते हैं तो इसका मतलब हमें अभी से परिवर्तन करने की जरूरत है, नहीं तो इसके बहुत हानिकारक प्रभाव हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति पर पड़ने वाले हैं। अब लास्ट में एक स्टोरी सुना करके हम पूरा करेंगे कि एक बार एक बच्चे को बहुत गुस्सा आता था तो उसके पिताजी ने देखा कि ये गुस्से में कितनी चीजें रोज तोड़ देता है, उठा के फेंकता है, इतना ज्यादा गुस्सा है इसके अंदर, कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने किसी से पूछा और फिर ये उपाय, अपने बच्चे को बुलाया अपने पास, एक खाली कमरे में उसको ले गए और उसे कहा कि देखो जब तुमको गुस्सा आता है ना तो कोई चीज मत फेंको, लेकिन कीलें दी उन्होंने उसको, बड़ी बड़ी कीलें थी, दीवार में कील ठोक दो, मतलब फोर्स है उसे कहाँ यूज करना है। तो वो उन्होंने उसको कहा कि जितनी बार तुमको सारे दिन में गुस्सा आता है, हर बार एक कील यहां दीवार में ठोक देना। तो बच्चे ने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो देखा कि एक दिन पूरी दीवार में उसने 50 कीलें ठोक दी, सारे दिन में 50 बार गुस्सा किया। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, लगभग इतनी ही कीलें उसने दीवार में ठोक दी, तो दीवार तो भरने लगी, कीलें ठोकता जा रहा था वो जब जैसे जैसे गुस्सा करता था। तो वो कीलों को देख के उसको रियलाइज होने लगा कि मैं इतना गुस्सा करता हूं, ये कमरा ही भरने वाला है कीलों से, तो क्या मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या जरूरी है इतना गुस्सा करना। तो उसने उस दिन से गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो उसने अपने पिता को कहा कि अगर मैं गुस्सा नहीं करूं तो उसने कहा जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करते हो किसी भी बात पर, अगर कंट्रोल कर लेते हो तो वो एक कील निकाल दो। उसने कहा ठीक है। तो अब उसको इंटरेस्ट आने लगा कि ये कीलें पूरी निकल कब जाए ना। तो हर दिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसको सफलता मिलने लगी और काफी दिनों तक उसने पूरे कमरे की सारी कीलें निकाल दी। और एक दिन उसने महसूस किया कि उसको पूरा दिन आज सचमुच गुस्सा आया ही नहीं, तो इतना खुश हुआ और अपने फादर के पास जाके बोला कि पिताजी आज तो मैंने सारा दिन गुस्सा नहीं किया है। तो उसके पिता कुछ बोले नहीं, शांति से उसको उस कमरे में ले गए। उन्होंने कहा लेकिन इस कमरे की भले ही सारी कीलें निकल चुकी हैं, पर अब ये जो निशान पड़े हैं दीवार पर, ये तो सदा काल के लिए रह जाएंगे। तो ऐसे ही गुस्से का प्रभाव होता है कि भले हम गुस्सा करके कई बार माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन उसका वो जो प्रभाव पड़ जाता है वो प्रभाव रह जाता है। इसलिए कोशिश करना है कि क्रोध पर हमारी पूरी तरह से विजय हो। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।